सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर कुंद महाराज ने अपने आध्यात्म ग्रंथ समय सार के भीतर एक गाथा सूत्र लिखा। वह गाथा सूत्र हमारे लिए आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ने की एक सत्प्रेरणा और एक अच्छी समझ प्रदान करता है। शुद्ध परिचिदाणु भूता सवस्व विकाम भोग बंध कहा ए अत्तशुभ लंबो नवरि न सुलहो विहत्तस्य। आत्मा का कल्याण जब कभी भी होगा तो एकमात्र अपनी आत्मा के निकट आने पर ही होगा। जिनने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया उन सभी जीवों ने एकत्व विभक्त अपनी शुद्ध ज्ञान स्वरूपी आत्मा का ही अवलंबन लिया और उसमें ही रमणता करके अपनी निर्मल अवस्था को प्राप्त किया। संसार में सुलभ और दुर्लभ दोनों तरफ देखें तो सुलभता किसकी है और दुर्लभता किसकी है। सुलभता के लिए तो हमारे लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। एक भौतिकता के युग में जब एक और हम जी रहे हो और इस भौतिक चकाचौंध के भीतर हर एक व्यक्ति के मन में एक ही आकांक्षा पैदा होती है जिस किसी भी तरह से सुख की अनुभूति होनी चाहेगी। हर व्यक्ति के अंदर में ऐसी आकांक्षा हुआ करती है लेकिन उस आकांक्षा की पूर्ति और पूर्ति के जो हमारे साधन हैं वो किस प्रकार के हैं इस तरफ हमारा विचार नहीं जाता। हम सुख तो पाना चाहते हैं लेकिन सुख के जो ठीक ठीक साधन हैं उनको नहीं पहचानते। हमने अभी तक सुख पाने के लिए जो किया वह भौतिक सामग्री के संयोजन संवर्धन और संरक्षण में ही सुख की अनुभूति की और ये भौतिकता की अनुभूति ये भौतिक सामग्री ये सांसारिक वैश्यक सुख सुविधाएं हमारे लिए एक ही बार उपलब्ध हुई हो ऐसा नहीं है। एक ही जीवन में उपलब्ध हुई हो ऐसा भी नहीं है। कई कई जीवन बीत गए और कई कई बार ये सामग्रियां हमें प्राप्त हुई हैं। इसलिए आचार्य महाराज को लिखना पड़ा कि शुद्ध पर चिदान भूदा सब काम भोग बंध कहा। ये जो विषय भोग की सामग्रियां हैं ये कई कई बार हमारे सुनने में आई हैं, ये कई कई बार हमारे परिचय में आई हैं और अनेक अनेक बार हमारे अनुभूति में भी आई हैं। ये भोग काम और बंधन की ये कथाएं इससे संबंधित विषय वस्तुएं जबकि हमारे सुनने में परिचय में और भोगने में अनेक बार आ रही हूं तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, इसको आप सुलभ वस्तुएं कहेंगे या दुर्लभ? जो सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं भी वस्तुएं सुलभ कहलाती हैं। इस ये सुलभ चीजें हमारे लिए कई बार मिली, यत्तसुविलंभो, इस प्रकार की वस्तुएं कई कई बार हमने प्राप्त की उपलब्ध की लेकिन नवरी न सुलभो विहत्तस्य, कहते किंतु वह एकत्व विभक्त जो सुख का भंडार ऐसा अपना ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा बहुत दुर्लभ है, वह आज तक हमें उपलब्ध नहीं होगा और ना उसे उपलब्ध करने की हमने कोई कोशिश की है। कारण कि हमारी कोशिश भी इसलिए नहीं हुई, हमारी पूरी की पूरी कोशिशें भौतिकता की ओर हैं, क्योंकि हमारी धारणा में पहले से बैठ चुका है कि अभी तक हमने निर्णय नहीं किया और यदि निर्णय किया भी है हमने तो हमारा निर्णय विपरीत दिशा में गया। हमने सुख पाने की आकांक्षा रखी लेकिन हमने सुख की क्वालिटी ना समझी, हमने सुख पाने की आकांक्षा रखी लेकिन सुख किससे मिलेगा उन साधनों का परीक्षण ठीक ठीक नहीं किया और इसलिए हमारा ध्यान या हमारा मन उस तरफ आकर्षित होता है जो वस्तुएं सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं, हम उनमें से ही सुख खोजना प्रारंभ कर देते हैं और हमने एक एक इंद्रिय के विषयों के विषय भोग की जो सामग्री उसे उपलब्ध करने में अपना पूरा पुरुषार्थ और परिश्रम किया। हमें लगा कि शायद हमारे लिए अच्छा अच्छा पहनने से सुख मिलेगा तो हमने तरह तरह के वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिए। हमें ऐसा लगा कि शायद हमारे शरीर की सुंदरता में हमें सुख मिलेगा तो हमने शरीर को अच्छा अच्छा श्रृंगारित करने में लग गए और तरह तरह की सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का उपयोग किया लेकिन अंत तो गत्वा ये एहसास किया हमने ये सब कुछ कर लेने के बाद में हमें शरीरगत जो सुख प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होगा। हमारा मन बदला और फिर सोच दूसरा होगा, शायद हमारे पहनने में सुख नहीं है, शरीर की सुंदरता में सुख नहीं है, शायद चखने में सुख मिलेगा। तो चखने की जो सामग्री थी, खाने पीने की जो सामग्री थी, हमने उसे जुटाना प्रारंभ कर दिया तो तरह तरह के जो भोजन थे, तरह तरह के जो पकवान थे, तरह तरह के हमारे भोज्य पदार्थ थे, हमने उसे भोगा लेकिन भोगने के बाद में भी अंत में हमारे लिए आकुलता हाथ लगी, पीड़ा हाथ लगी, उसमें से सुख नहीं मिला। सुखाभास अवश्य मिल सकता है, भोगते वक्त ऐसा लग सकता है हमारे लिए कि सुख मिल रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है लेकिन जब अंत में हम निर्णय पर पहुंचते हैं तो खाली रह जाते हैं क्योंकि सुख मिल नहीं पाता है। इस सुख का मात्र आभास होता है कि हमने किसी पदार्थ को खाने के लिए उपक्रम किया, हमारे मन में आकांक्षा हुई कि ऐसा खाएंगे तो हमें सुख मिलेगा और हमने खाया, तत्क्षण तो ऐसा लगा हमें बहुत अच्छा लग रहा लेकिन खा लेने के बाद जैसे ही वो हमारे गले से नीचे उतरा और उसके बाद क्या देखते हैं, वह दूसरे पदार्थ के खाने की आकांक्षा पैदा हो जाती, फिर तीसरे की हो जाती, फिर कहते एक एक करके पता नहीं कितने कितने पदार्थों को हम खाने की आकांक्षा पैदा कर लेते और खा लेते हैं लेकिन अंत तो गत्ता वही आकांक्षा बनी रहती है कि इसमें नहीं मिला दूसरे में मिलेगा, इसमें नहीं मिला तीसरे में मिलेगा, ये दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा करते करते ये रसना इंद्रिय जन्य जो सुख हमें मिलना चाहिए था उसमें भी हमें सुख नहीं मिला। हमने बदल दिया शायद खाने में सुख नहीं तो हमें सूंघने में सुख मिलेगा, और सूंघने के लिए हमने तरह तरह की सुगंधित चीजें उपयोग करना प्रारंभ कर दी, तरह तरह के सुगंधित फूल, तरह तरह की इत्र, तरह तरह की वो सुगंधित वस्तुएं हमने भोगी, लेकिन शायद सूंघने के बाद में भी यही लगा कि सूंघा फिर कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद फिर सूंघने की आकांक्षा, मतलब क्या इसमें भी सुख नहीं मिला। शायद देखने में सुख मिलेगा और हमने देखने की पूरी कोशिश की, सब तरफ देखने का प्रयास किया, चारों तरफ पूरे संसार को देखने की कोशिश की कि शायद किसी को देखने से सुख मिलेगा, लेकिन सब कुछ देख लेने के बाद में भी सुख नहीं मिला। यदि इन आंखों से नहीं देखा तो हमने मशीनें लगा लगा करके देखना चाहा, यदि आंखें कमजोर हो गई तो चश्मा लगा करके देखना चाहा, लेकिन हमने देखा लेकिन वह नहीं मिला जिसके पाने के लिए हम निकले थे। शायद हमारे लिए सुनने से सुख मिलेगा तो हमने सुनने के लिए तरह तरह के संगीत जात कर लिए, वो सुनने की सुख सुविधाएं टेप रिकॉर्डर और रेडियो, तरह तरह के मालूम नहीं कितनी तरह की हमारे लिए संगीत की सुविधाएं मिल गई, लेकिन इसके बाद में भी संगीत सुना वो क्षण तो अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो बदला और फिर वही की वही अवस्था। मतलब क्या होगा कि पांचों इंद्रियों के विषय भोग की सामग्री हमने खूब भोगी, लेकिन भोगने के बाद में भी वह सब नहीं मिला, मिलेगा भी कैसे? जिसे हमें सुनना चाहिए था हमने उसे नहीं सुना, दुनिया की तमाम चीजें सुनते रहे, तमाम प्रकार का संगीत सुनते रहे, लेकिन आत्मा के अंदर से उठने वाला वैराग्य का कोई संगीत, वितरागता का कोई संगीत था, उसे हमने सुनने से मना कर दिया, सुख मिलेगा क्या? जिसे एक बार हमें चखना चाहिए था उसे हम चखने से हमने इंकार कर दिया कि हमें नहीं चखना, दुनिया की पदार्थ दुनिया की वस्तुएं चखते रहे, लेकिन हमें जो आत्मा के अंदर से उठने वाला समता का जो रस था उसे चखने की हमने कोशिश नहीं की, जिसमें से सुख मिलता था, जिसमें ऐसे आनंद की अनुभूति मिलती थी, हमने वो चखने की कोशिश नहीं की। शायद जिसकी सुगंधी लेने से हमारे लिए आनंद आता, वो संयम की सुगंधी हमने नहीं ली, तमाम पदार्थों को सूंघते रहे लेकिन संयम की सुगंधी नहीं ले, दुर्लभ चीजें छोड़ दें। हमारे लिए जिसे भोगना चाहिए, खाना चाहिए तो शायद उसे नहीं खाया और दुनिया को खाते रहे। जिसे हमें देखना चाहिए तो हमने उसे नहीं देखा, सबको देखते रहे। जो एकत्व विभक्त हमारा आत्मा था उसे देखना चाहिए था, उसे नहीं देखा। हमने शरीर को सजाते रहे लेकिन जिसे सजाना चाहिए था उसे नहीं सजाया, उसे तो हम मलिन करते रहे अपनी विषय कसाय और वासनाओं से, हमने अपने आप को मलिन कर दिया और शरीर के लिए सुंदर बनाने के लिए लगे लगे तरह तरह के वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के पदार्थ हम उपभोग कर रहे हैं। ये तय होगा इससे कि ये सुलभ वस्तुएं हमारे लिए कई कई बार मिली, लेकिन मिलने के बाद में इनसे वह नहीं मिला जिसके पीछे हम दौड़े थे, जिसके पाने के लिए हमने दौड़ लगाई थी कि हमें इससे सुख मिलेगा, लेकिन इससे हमें सुख नहीं मिला। सुख कहीं और है, ये हमारी भ्रांतियां हैं कि यहां सुख मिलता है। सुलभ चीजों में सुख नहीं है, दुर्लभ कोई यदि चीज है तो वो एक ही है, नमर न सुलहो बेहतस है, एकत्व विभक्त जो हमारी आत्मा है वही इतनी दुर्लभ है क्योंकि वो सारा का सारा वहीं पर तो है। सुख का टैंक यहां है लेकिन हम टैंक की तरफ नहीं जाते, टोटियों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, टैंकी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मुझे एक घटना याद आई, एक बार और मैंने सुनाई थी कि अरब कंट्री से एक यात्री भारत यात्रा पर आया और यहां एक होटल में रुक गया और होटल में नहाने की बड़ी अच्छी सुविधा थी और अरब कंट्री में पानी की बहुत कमी थी, यहां बहुत पानी मिला तो उसने खूब नहाया धोया तो उसने देखी कि व्यवस्था तो बड़ी सुंदर है, टोंटी खोलो और बहुत सारा पानी मिलता है। तो नहाने धोने के बाद उसने क्या किया, धीरे से वो टोंटी नल में से पाइपलाइन में से खोली और अपने जेब में रखना चाहिए, तब तक नौकर ने देख लिया, बाबू जी ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा चुप रहो, और अपने कमरे में ले गया, उसने 100 का नोट निकाला, नौकर को कहा चुपचाप रहो कहना मत। नौकर समझ गया कि बात क्या है, तो उसने कहा कि बाबूजी और चाहिए, और मिल सकते हैं? हाँ हाँ मिल जाएंगे, कितनी चाहेंगे? 25 और ला दो, 100-100 के 25 नोट और दिए। बाजार गया, 100 रुपए की 25 टोटियां लाया और उसने थमा दी उसको। अब बड़ा प्रसन्न था वो, उसने अपने सूटकेस में रखी, यात्रा करके वापस अरब कंट्री लौटा और वहां जाकर लोगों ने पूछा कि आप यात्रा पर के गए थे, क्या देखा, क्या लाए वहां से। कहने मैं वो चीज लाया हूं यहां के लोगों के लिए, शायद जिसके लिए लोग तरसते हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते, मैं वो चीज लेकर के आए हैं, इतना पानी मिलेगा जितना चाहेगी उतना। बोले दिखाओ कहां है, रोको जरा। सूट के उस खोला, उसने कहा लो अभी, और उसने टोंटी घुमाई, एक बूंद भी पानी नहीं निकला। अरे ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरी टोंटी निकाली, उसने उसको भी घुमाना चाहा, उसमें से एक बूंद भी नहीं निकला। आप समझ गए होंगे बात, तो टोंटी में से पानी क्यों नहीं निकला। आप उसकी मूर्खता पर हंस सकते हैं कि अरे मूर्ख, पानी टोंटियों में नहीं होता है, टोंटी तो एक माध्यम है पानी के निकालने का, कितना चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कब नहीं चाहिए, उसका एक माध्यम है। पानी तो टैंक में से आ रहा है, जिसमें से एक पाइपलाइन डली हुई है और वो टोंटी में से होकर के आता है, और उसकी मूर्खता पर हम हंस लेते हैं कि ये तो इतना भी नहीं मालूम कि पानी कहां से आ रहा, टोंटियों में पानी नहीं है, लेकिन मूर्ख टोंटी में पानी खोज रहा है। लेकिन हम अपनी मूर्खता पर कभी नहीं हंसे कि हमने भी तो टोंटियों में से पानी निकालने की कोशिश की। सुख कहां मिलता है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। हमारा ध्यान वहीं गया कि इस पदार्थ को चखने से सुख मिलेगा, इसको सूंघने से मिलेगा, इसको पहनने से मिलेगा, इसके सुनने से मिलेगा, इसको देखने में सुख मिलेगा, और उन पदार्थों के उपभोग करते करते हम सुख निकालते रहे। अरे टोंटियों में से सुख निकालना है बंधुओं, इसमें सुख है ही नहीं। यदि होता तो मिलता, आज तक किसी को मिला, और यदि मिला तो छोड़ क्यों दिया आपने फिर, और एक बार मिल गया तो कहां चला गया वो सुख, मैं पूछना चाहता हूं। सुख एक बार मिलता है तो हमेशा रहना चाहेगी, उसके पास है ही नहीं तो मिलेगा कहां से, कहां से आएगा, उसमें नहीं है तो सुख तो कहीं और है, सुख का टैंक तो यहां है, जो हमारी ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, सुख वहां पर भरा होगा, अनंत सुख का भंडार भरा होगा है, बस पाइपलाइन जोड़ी अपनी टोंटियों से। ज्ञान की पाइपलाइन जब हम उन पदार्थों की तरफ जोड़ देते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, पदार्थों से सुख मिल रहा है, ऐसा हमें आभास होता है। लेकिन वास्तविकता की तरफ देखें तो पदार्थों में सुख नहीं है, सुख तो हमारे भीतर आता है। हम किसी पदार्थ का उपभोग करते हैं तो उसके साथ हमारा जो ज्ञान जुड़ जाता है, उस पदार्थ की जो जानकारी हमें होने लगती है, जो हमारे जानने का क्रम है, जो जानने रूप हमारी प्रक्रिया है, उसके साथ जो ज्ञान का एक तारतम्य जुड़ा हमारा, वो ज्ञान ही हमारे लिए सुख प्रदान करता है। पदार्थ किसी के लिए सुख नहीं देते हैं बंधुओं, सुख तो हमारे भीतर भरा हुआ है, वो सुख हमें खोजना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं खोज पाते, कारण कि हमारा ध्यान वहां नहीं जा रहा है। ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान जाएगा तो पदार्थ अपने आप हमारे लिए फीके लगने लगेंगे, ऐसा लगने लगा ये निस्सार है, इसमें कुछ भी नहीं है, सुख तो कहीं और है, जो हमारे ज्ञान से हमें प्राप्त होता है। पदार्थ हमें सुख नहीं देते, पदार्थ हमें दुख नहीं देते, दुख देता है हमारा ज्ञान, और सुख देता हमारा ज्ञान, और दुख देता हमारा अज्ञान। हम क्या चाहते हैं, हमारी अज्ञानता की वजह से तो हमें दुख मिल रहा, और हमारे ज्ञान की वजह से हमें सुख मिलता है। जब हमारा ज्ञान मोह से सहित हो जाता है तभी वही ज्ञान हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है, और वही ज्ञान जब वितरागता के साथ जुड़ता है तो वही ज्ञान हमारे लिए सुख का कारण बनता है। पदार्थों के साथ जो हमारा अटैचमेंट, ये मोह की परिणति जो हमारी बनती है वो हमारे लिए दुखदायी बन जाती है। एक बार मैंने घटना सुनाई थी कि एक सेठ जी के लिए रसगुल्ला खाने का बड़ा मन था, कई बार अपनी श्रीमती जी से कहा कि हमें रसगुल्ला बनाइए, तो टालते गए एक दिन उन्होंने रसगुल्ला बना दिए, बड़े गरम गरम रसगुल्ले थे। सेठ जी को मन हुआ कि जल्दी से लाओ, नाश्ता का समय हो रहा है, आज तो कम से कम इसका आनंद ले लूं, कितने दिनों से कह रहा था आज बन करके तैयार हो गए हैं, खाने का आनंद आज आएगा मुझे। और जैसे ही प्लेट लग करके सामने आई, सेठ जी ने जल्दी जल्दी रसगुल्ला खाया, एक रसगुल्ला मुंह में रखा तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में पहुंच गए, क्योंकि बरसों की आकांक्षा की पूर्ति आज हो रही थी। इतना मीठा रसगुल्ला खाया कि उनका मन मालूम नहीं कैसा हो गया, इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे आनंद के सरोवर में डूब गए हों। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होगा, एक टेलीफोन आ गया और सेठ जी ने उठाया। क्या था उसमें? सेठ जी, जो आपका ट्रक आ रहा था रास्ते में आग लग जाने से, वो सारा का सारा सामान मैं ट्रक के जल गया है। अब तो बहुत बड़ा शौक लग गया। दूसरा रसगुल्ला लेकर के मुंह में रखा हुआ है, अब रसगुल्ले में से कोई स्वाद नहीं आ रहा है। अब पीड़ा एहसास हो रही है, पीड़ा का एहसास हो रहा है, आकुलता का एहसास हो रहा है कि हमारे लिए इतना बड़ा घाटा लग गया है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, ट्रक जल गया है, उसमें आने वाला कीमती माल जल गया है, बर्बाद हो गया, लुट गया। रसगुल्ला वही है जो पहले खाया था, दूसरी बार भी वही रसगुल्ला है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन पहली बार सुख की अनुभूति हो रही थी, दूसरी बार सुख कहां चला गया? उस रसगुल्ले में से सुख कहां गया? था ही नहीं तो आता कहां से? सुख आ रहा था उनकी जानकारी के, उनके ज्ञान की वजह से, उन्होंने सोच रखा था कि इसके खाने से हमें सुख मिलेगा, और उनका ज्ञान उस रसगुल्ले के साथ जुड़ गया, इसलिए खाते वक्त उनका ज्ञान उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो सुख तो ज्ञान से मिल रहा था, पदार्थ में से नहीं है। यदि पदार्थ में से सुख होता तो दूसरी बार जो रसगुल्ला खाया उसमें से सुख क्यों नहीं मिला? पीड़ा कहां से आ गई? पीड़ा भी आई तो उनकी अज्ञान की वजह से आई थी पीड़ा, कि हमारा इतना नुकसान हो गया है। तो पीड़ा वहां से आई, रसगुल्ला यहां खाया जा रहा है लेकिन कोई स्वाद नहीं, बेस्वाद लग रहा है। कहने का आशा यह है कि पदार्थों की तरफ मत जाएंगे, पदार्थों से हट करके जो इन पदार्थों को जानने वाला है, जो इन पदार्थों को भोगने वाला है, इन पदार्थों को देखने चखने वाला है, एक बार उसकी तरफ तो दृष्टि लाइए कि वो कौन है। उसे जानने की तो कोशिश करिए कि वो कौन है। वो मैं हूं, मुझसे बड़ा दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। पदार्थों की क्या कीमत? पदार्थ यहीं पड़े रह जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, कीमत मेरी है, पदार्थों की नहीं है। इसलिए मैं कीमती हूं या पदार्थ? भोगने वाला कीमती है या भोग? भोग पदार्थ कीमती नहीं होते हैं, भोगता कीमती होता है। भोग यहीं पड़े रह जाते हैं, भोगता चला जाता है। सारे भोग पदार्थ किसी के साथ नहीं गए आज तक। आपने इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी कर ली, बहुत सारी सुख सुविधाएं जोड़ करके रखी, जिस दिन इस दुनिया से गया उस दिन तुम्हारे साथ क्या गया बताइए? वो भोगने वाला जो था वो चला गया यहां से, सारे भोग पदार्थ यहीं पड़े रह गए। मतलब ये है कि कीमत भोगता की है, भोग पदार्थों की नहीं है। पदार्थों के लिए हम इतने पीछे दौड़ रहे हैं, अपना जीवन विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि अपनी कीमत पहचानो, अपने आप की तरफ, अपने निकट आने की कोशिश करो। जहां सुख है उस सुख को पाने की कोशिश करेंगे तो सुख मिलेगा बंधु को, और दुर्लभ जो तत्व तो हमारा है आत्मतत्व, वह प्राप्त होने पर सुख अवश्य मिलेगा। हम सब की यही भावना है कि हम सब उस एकत्व विभक्त आत्मा के प्रति अपनी रुचि बनाएं, श्रद्धा बनाएं, उसकी ज्ञान करें, उसमें ही आचरण करें तो सुख की प्राप्ति होगी। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की।
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयानी, पूजो सतत केवल ज्ञान पाने, पूजो सतत की अपने जीवन के बारे में हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, दूसरे के विचारों को सुनना भी चाहिए, पर दूसरे के विचार हमेशा उधार की तरह है ऐसा भी विचार करना चाहिए, और वही विचार श्रेष्ठ हैं जो अपने या दूसरे के जीवन के अनुभव से प्राप्त हुए हों। जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है इस तरह का विचार करना। यहां हम जिस तरह जी रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है, एक विचार ये करना चाहिए। दूसरा विचार यह है कि जिस तरह हम जी रहे हैं क्या इसी तरह जिया जा सकता है, या इससे कोई जीने का बेहतर ढंग भी हो सकता है, ऐसा विचार भी करना चाहिए। अगर जीने का कोई बेहतर ढंग हो सकता है तो मैं अभी तक उस बेहतर ढंग को क्या फॉलो नहीं कर रहा हूं, यह विचार करना चाहिए। बस मेरे ख्याल से जीवन के विकास के लिए इतना विचार पर्याप्त है। हम लोगों के साथ मुश्किल यह है कि हमें लगता है कि किसी ने हमें यहां भेजा है और जो जैसा हम जी रहे हैं उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। सबसे पहला हमारा भ्रम हमें दूर देना चाहिए, हम जैसे हैं जिस हालत में हैं जहां हैं उसके लिए जिम्मेदारी हमारी है। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी, ये फील होना चाहिए। ये कहने में तो आ रहा है लेकिन फीलिंग में भी होना चाहिए, और जैसा मैं जी रहा हूं वो मेरा जीने का ढंग अच्छा है या बुरा है ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो सुख से मालूम पड़े। मुझे अगर अपने जीने के ढंग से सुख मिल रहा है और उसके पीछे कोई दुख नहीं है, मैं वैसे वाले सुख की बात नहीं कर रहा हूं जिसके पीछे पीछे दुख चला आता है, और शायद इसी वजह से दुष्यंत तक को लिखना पड़ा कि यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो और यहां से चलें उम्र भर के लिए। यहां तो हम जहां जहां सुख खोजते हैं वहां से धीरे से दुख निकल आता है, तो ये जो धीरे से दुख निकल आता है सोचते हैं सुख, तो इसका मतलब है कि ये लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, कोई और होनी चाहिए जिसके पीछे से दुख नहीं मिले। बहुत बहुत सहज सी चीज है, आप अनुभव खुद कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि मैं इन सब विचारों को कर चुकने के बाद जो शेष कर है विचार उसे फॉलो क्यों नहीं करता हूं, ऐसा कौन सा ऑब्स्टिकल है, ऐसी कौन सी मेरी कमजोरी है या मजबूरी है जो मेरे बीच में आ जाती है। हमें इसका ही विचार करना चाहिए। जैन धर्म फोकट वाला धर्म नहीं है कि किसी ने जादू मंत्र करा और आपका हो गया काम, इसमें विश्वास मत रखना। विश्वास तो बहुत रखना जैन धर्म में, लेकिन जैन धर्म के इस पहलू में विश्वास मत रखना कि कोई छड़ी फेरेगा और सबका मोक्ष हो जाएगा। नहीं, भगवान महावीर स्वामी जैसे 24 तीर्थंकर आए, अपना अपना कल्याण करके चले गए, जिन्होंने उन्हें फॉलो किया वे भी उनके साथ वहीं तक पहुंच गए। मजा ये है जरा भी पीछे नहीं, उन्हीं के साथ में। हमें ये पहले तैयारी कर लेना पड़ेगी, हमें कैसे रहना है ये हमारी अपनी चॉइस है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे रहने के लिए मजबूर हैं, नहीं, आप विचार करेंगे कि हमने जैसा रहना स्वीकार किया वो हमारी कहीं ना कहीं अनकॉन्सियस में या कॉन्सियस में पड़ी हुई कोई ना कोई चॉइस है, चुनाव है, हम जैसे जी रहे हैं। आज की नहीं है, हो सकता पुरानी, आज तो लगता है कि बहुत बड़े मकान में रहे लेकिन पहले तो आपने ऐसा कुछ कर ही नहीं जिससे कि आप बहुत बड़े मकान में रह सकें, तो ये अल्टीमेटली हमारी ही चॉइस कहलाएगी। अब इतनी सारी मुश्किलें मैंने खड़ी कर दी आपके सामने, अभी तक तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि करना क्या है, बस थोड़ा सा आए मंदिर में पूजा पाठ करा, कोई एक पूजा करता अपन दो कर लेंगे, कोई चार पेज पढ़ता अपन आठ पढ़ लेंगे, और कोई जाकर के घर में जो है और किसी चीज का त्याग करता है अपन उससे ज्यादा कर लेंगे, हो गया बस। और शाम को अगर कोई महाराज जी आ गए तो थोड़ा उनके पास चले जाएंगे। अब इससे ज्यादा करें क्या, आखिर आप चाहते क्या है ना, ऐसा लगने लगता कई बार कि तब धर्म कर रहे हैं, बढ़िया है, अगर इतने में अपना काम चलता है तो चलाइएगा, लेकिन काम ही चलेगा, इससे पूरा काम नहीं होने वाला। काम तो तभी होगा जब थोड़ा सा आप विचार करेंगे कि मुझे यहां इन सब चीजों को किस तरह से देखना है। मैंने तो इतने वर्षों में एक ही चीज अनुभव करी, अच्छी चीज को बुरे ढंग से देखिएगा बुरी हो जाएगी, बुरी चीज को अच्छे ढंग से देखिएगा अच्छी मालूम पड़ेगी। यहां चीजें अच्छी बुरी नहीं हुआ करती हैं, यहां हमारा अप्रोच, हमारा एटीट्यूड जैसा है वैसी चीजें हो जाती हैं। ये बड़ा स्पष्ट सा अनुभव गम विचार है, आप अपने जीवन में करके देख लीजिएगा। अब उन सब चीजों के बीच मुझे करना क्या है, मुझे अपना एटीट्यूड चेंज कर लेना है, इसका मतलब यह हुआ तब मैं जहां हूं जैसे जी रहा हूं वही बेहतर हो जाएगा और वही मैं चाहता हूं कि उसको फॉलो करूं। मैं फॉलो क्यों नहीं कर पाता हूं, करता भी हूं तो थोड़ी देर के लिए फॉलो करता हूं, कोई नियम ले लेता हूं, सौगंध ले लेता हूं, तो जितने दिन की सौगंध है उस दिन तो ठीक ठीक चलता है, उसके बाद तो मेरा कॉन्शियस फिर अलाउ नहीं करता और फिर मैं वहीं खड़े हो जाता हूं जहां पहले खड़े था। ऐसा तो नहीं होता कि एक मैं अपनी यात्रा शुरू करूं और हमेशा एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा हूं, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सुबह तू उस जगह से बढ़ के सो। क्यों नहीं ऐसा हो पाता कि जहां मैं आज सुबह जागा हूं, जिस आत्म दशा में आज जागा हूं, जिस आत्म पवित्रता से आज जागा हूं, कल उससे भी सोने से पहले मैंने कितनी यात्रा तय की है दिन भर में, मैं कितने अपने उस स्वरूप की तरफ बढ़ा हूं जिस स्वरूप के बारे में बहुत सुनता आया हूं, या स्वरूप छोड़ दीजिएगा जिस लाइफ स्टाइल के बारे में मैं सोचता हूं कि वो बेहतर है जीने का ढंग, उस तरफ मैं कितना बढ़ा। इसके लिए चाहिए दृष्टि की निर्मलता।
पार्थवश बढ़ती जा रही है, परमार्थ भू श्रद्धा नहीं बढ़ रही, ये ध्यान रखना, बहुत गौर से सोचना मैं जो कह रहा हूं। खूब सारी श्रद्धा, ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारे लोग बढ़ गए, बहुत प्रभावना हो रही, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ आती प्रवचन में, लेकिन कौन सी श्रद्धा है जरा टटोल के देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वार्थ भू श्रद्धा हो परमार्थ श्रद्धा ना हो। और अगर परमार्थ भू श्रद्धा होगी तो निश्चिंतता दिए बिना नहीं रहेगी और आदमी को सरल बनाए बिना नहीं रहेगी। आदमी को एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमेशा दिशा देती है तो वो श्रद्धा दिशा देती है। और श्रद्धा कैसी है मैं तो समझा नहीं सकता आपको, मैं तो उदाहरण दे सकता हूं, उदाहरण दे देता हूं कि श्रद्धा कितनी बड़ी चीज होती है और कैसे निश्चिंतता देती है। छोटे छोटे से उदाहरण देता हूं। एक भाई है और उसकी एक बहन है, माता पिता तो दोनों नहीं हैं, वो यात्रा पर जा रहे हैं और यात्रा जहाज से कर रहे हैं, वो पानी वाले जहाज से, तो महीनों लग जाते हैं पानी वाले जहाज में। बहन थोड़ी सी कमजोर है, वो जल्दी से उसका मन गड़बड़ा जाता है, उतना विश्वास नहीं जम पाता। भाई तो जो है बिल्कुल आत्मविश्वास उसके पास बहुत है, लेकिन मजा यह है कि जिसका आत्मविश्वास ज्यादा है वो भगवान के बारे में ज्यादा बाह्य शो नहीं करता। मैं इसका मतलब ये मत लेना कि जो लोग मंदिर नहीं जाते उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, ऐसा अर्थ मत लेना मेरी बात का। हाँ, नहीं तो आप सोचो कि मंदिर हम इसलिए नहीं जाते, आप ही ने तो कहा था कि वो बाहर कुछ प्रकट नहीं करते, उनके भीतर श्रद्धा रहती। नहीं, वो प्रकट कर नहीं पाता था, उसको मौका नहीं मिलता था, मिलता तो करता। एक दिन ऐसा हुआ कि घोषणा हुई कि तूफान आने वाला है, भारी तूफान आने वाला है, और वाकई में तूफान आया और जहाज जो है डगमगाने लगी। तो ये बहन जो है भागी कि भाई कहाँ है, तो देखा तो वो सामने डेक पर बैठा हुआ मजे से और आनंद ले रहा है, मुस्कुरा रहा है, और तूफान इतना जोर शोर से आ रहा है। तो उसने भाई के पास जाकर उसको हिलाया कि तू होश में है कि नहीं, तो उसने कहा हूं, तेरे को क्या हुआ इतनी घबराई हुई है, तूफान आने वाला है। बोले क्या फर्क पड़ता, बोले छोड़, तू मजाक छोड़, ये तेरा मजाक हमेशा अच्छा नहीं लगता, अभी इतनी मुश्किल है और गंभीरता से इस चीज को सोचना चाहिए। तो भाई ने क्या करा मालूम, वहीं पर एक रस्सी डरी हुई थी, वो रस्सी में लगाया फंदा, हंसता रहा और फंदा फेंका और बहन की गर्दन में जाके गिरा और कसना शुरू कर दिया। बहन ने कहा कि तू ऐसे मौके पर ऐसा कर रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तू मजाक अभी भी नहीं छोड़ रहा अपनी, और वो कसता चला जा रहा है। और जब बहुत सारा कस गया तब भी बहन मुस्कुरा रही थी, तब उस भाई ने कहा कि तेरे को डर नहीं लगता, मैं कसते चले जा रहा हूं और जोर से कस दूंगा तो तू खत्म हो जाएगी। तो बोलती मुझे डर नहीं लगता, तू मेरा भाई है, मुझे मार कैसे सकता है। बोली बस बैठ जा यहीं पर, मुझे भी डर नहीं लगता, मेरा भगवान है, मुझे मारेगा वारेगा नहीं, ये जहाज ऐसे नहीं डूबने वाला। इतनी सहज सी चीज है श्रद्धा, बहुत कठिन नहीं है, बना ली है लोगों ने, इंटरप्रिटेशन करने वालों पे डिपेंड करता है। उन्होंने बना ली है कि ये ऐसी ऐसी चीज है, बहुत कठिन चीज है श्रद्धा, और बहुत मुश्किल से होती है, एक आध दो जनों को होती है, और जब दो जने चर्चा कर रहे हों तो भेजा के हैं कि एक तुम्हें है सम्यक दर्शन, एक हमें और एक कौन हो और तीसरे को, बाकी तो खत्म, तीन ही दो ही तीन हो सकते, तो ऐसा बना लिया है। लेकिन ये सम्यक दर्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं है, बहुत ऐसी है जिस जिन क्षणों में हम सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति अपने को समर्पित कर देते हैं और निश्चिंत होकर के जीवन जीते हैं और अपने आत्मा पर विश्वास करते हैं, अपने आत्मा में रुचि रखते हैं, बाकी बाह्य पदार्थों को हम उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे वे हैं, तो वास्तविकता का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। रियलाइजेशन, रियलिटी का रियलाइजेशन, हमने वास्तविकता जान ली। मैंने पिछले दिनों जब मैं वहां था HEL में, तब मैंने कहा था कि एक बार वास्तविकता मालूम पड़ जाती तो कोई बेचैनी नहीं होती है, फिर एकदम अच्छा लगने लगता है। कांच के बारे में मैंने कहा था, कांच के सामान को संभाल संभाल के लाते हैं कि गिर ना जाए और टूट ना जाए, और कहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, अच्छी बात है। आपको नहीं मालूम कि कांच के सामान की तासीर क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है? उसकी वास्तविकता यह है, कांच की नजाकत इसमें है कि वो टूटे, गिरे और टूट जाए, उसकी नजाकत ही इसमें। लेकिन हम इस चीज को कहां स्वीकार कर पाते हैं, कितना संभाल के, कितना सहेज के रखते हैं कि टूट ना जाए, जबकि ये तय है कि जरा सा धक्का लगेगा और टूट जाएगा। और टूट जाने के बाद अगर आपने ये मान लिया होगा कि नहीं टूटेगा तो आपको रोना पड़ेगा, और अगर आपने माना होगा कि जितने दिन रहेगा रहेगा, एक दिन तो टूट ही जाएगा, तो आप हंसेंगे। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा, उसी गुब्बारे से खेलता है और फिर अचानक गुब्बारा फट, थोड़ी देर तो सोचता है कि हुआ क्या, फिर जोर से हंसता है कि अरे वाह, ये तो इसी के लिए था, खेल लिया और फट हो गया वो। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, जरा सी दीवार की ईंट हिल जाए तो इधर हिल जाता बहुत सारा, जरा सा कपड़ा फट जाए तो यहां फट जाता बहुत सारा, और जरा सा अगर बेटे के हाथ में 100 का नोट हो और जरा सा तुड़मुड़ जाए तो यहां ऐसा तुड़मुड़ जाता है कि बहुत मुश्किल होती, नहीं होता ऐसा। इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको वास्तविकता का बोध नहीं है इसका मतलब, या कि बोध है भी तो आपने उसे स्वीकार नहीं किया। करिएगा, स्वीकार करिएगा, श्रद्धा बहुत कीमती चीज है, और ऐसे ही होती सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा होती है, फिर जो भगवान ने हमें कहा है उस सब पर श्रद्धा होती है, फिर अपने आत्मा का स्वरूप मालूम पड़ता है तो उस पर हमारी श्रद्धा होती कि हाँ ऐसा स्वरूप है, मेरा बिगाड़ नहीं हो सकता, जब तक कि मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूं तब तक कोई मेरा बिगाड़ नहीं कर सकता, और अगर मैंने अपने परिणाम बिगाड़ लिए हैं तो भगवान भी उतर के आ जाए, मेरा सुधार नहीं कर सकते, मेरा संभाल नहीं कर सकते, ये कहलाती श्रद्धा। मेरे परिणामों की संभाल मेरे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है, ऐसी अगर श्रद्धा हो तो कौन ऐसा होगा जो अपने परिणाम खराब करेगा और अपने परिणाम खराब करके अपना संसार बढ़ाएगा। विचार करिएगा, और विचार करके मैं तो एक ही बात कहूंगा कि उस श्रद्धा को प्राप्त करिए जिस श्रद्धा के माध्यम से हम स्वयं अपने प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं और अपने परिणामों की संभाल करना शुरू कर देते हैं। यहां संसार में श्रद्धा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने परिणामों की संभाल करना, इतना ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और ज्ञान पूर्वक अपने आचरण को, अपने परिणामों को संभालना शुरू कर देता है, परिणाम संभालने का नाम ही व्रत नियम संयम है और अलग से कोई चारित्र नहीं है, परिणामों की संभाल ही बड़े से बड़ा चारित्र है। कहते कषाय का अभाव जितना जितना होता जावे उतना उतना आचरण पवित्र होता चला जाता है, तो परिणाम की संभाल का मतलब क्या है, कषायों से को मंद करते चले जाना, कषायों से बसते चले जाना, ये सब संसार हमें कषायों की तरफ प्रेरित करने वाला है। इस संसार में बहुत थोड़े लोग मिलेंगे भैया जिनके पास खड़े होके आपकी कषाय में मंदता आएगी, आपको विशुद्धि होएगी, वरना यहां संसार में जिस चीज के संपर्क में जाओ, जिस व्यक्ति के संपर्क में जाओ, सिवाय कषाय के और कुछ नहीं मिलता। हमारा तो इतने वर्षों का अनुभव है, तो इस संसार से बचने का उपाय यही है कि अपना आत्मविश्वास प्रकट करो और अपने परिणामों की जैसे बने वैसे संभाल करो। इतना ही हमारा आपके लिए देश है, विचार है, आप करिएगा जैसे बने तैसे करिएगा। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर।
यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
जब जग
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो। तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की जड़ियों में
समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मनिया।
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे जानकी प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। ज्ञान के प्रकाश देखो आप पर भाष देखो मनुष्य खाली है। तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो
सारी झुकते दुनिया वाले। हे महावीरा तेरी दया के खेल है अजब निराले। जय हो महावीरा,
जय बोल जय बोल,
दुख तू ही डाले,
जय बोल जय बोल,
तू रखवाला,
जय बोल जय बोल,
आके बचा ले,
जय बोल जय बोल।
जय हो महावीरा,
जय बोल जय बोल,
दुख तू ही डाले,
जय बोल जय बोल,
कर दुखड़े अपना बना ले।
जय महावीरा,
जय महावीरा।
अपना Thank you. जय हो महावीरा मेरी बिगड़ी बना दे दर पे न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल मेरी बिगड़ी बना दे दर पे न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल
जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल